नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये राहुल वो राहुल नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती में आज राहुल गांधी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। उनका भाषण काफी चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से बीमार होने के कारण राहुल गांधी सभा और प्रचार नहीं कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी ने मंगलसूत्र और मैनिफेस्टो को लेकर कई प्रकार के झूठे बयानों से माहौल गर्मा दिया। कांग्रेस ने जवाब तो दिया, लेकिन सैम पित्रोदा के इंटरव्यू के बाद लगा कि कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज बीमारी से ठीक होने के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कई सभाएं की हैं। इस वक्त विपक्ष की रैलियों पर नजर रखनी चाहिए। बीजेपी के पास कई हजार करोड़ का चंदा है, गोदी मीडिया भी है, दिन रात लगा हुआ है। बीजेपी की जीत का ऐलान हर विश्लेषण में कर दिया जाता है, तो देखते रहना चाहिए कि विपक्ष किस तरह से इस मुश्किल लड़ाई को लड़ रहा है, उसकी रैलियों में लड़ने का भाव है या नहीं, जीतने का मादा है या नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के अलावा सोलापुर में भी राहुल गांधी की रैली हुई। अमरावती में भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर राहुल गांधी की जगह इतने ही लोग प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए होते तो गोदी मीडिया केवल उस भीड़ पर ही डिबेट कर रहा होता और उसके बहाने उसकी तस्वीरें दिखाता, ताकि लगता कि मोदी लहर है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन में ज्यादा ही खटपट रही, मगर इस गठबंधन पर भी एक चुनौती है कि वह बीजेपी को कितनी टक्कर देता है। अगर यहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को रोक दिया तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए 400 का आंकड़ा मुश्किल हो जाएगा। अमरावती की सभा में राहुल के भाषण को हम पूरा दिखाना चाहते हैं। उनकी रैली का हाल आप भी देखिए और उनका भाषण कैसा है आप भी तुलना कीजिए। इस वीडियो में आगे आप राहुल गांधी का पूरा भाषण देखेंगे और नोट करेंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात बताने में कितना समय लगाया है। शायद इस वक्त उन्हें भरोसा होने लगा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता में हलचल पैदा कर रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, टारगेट किया है, मैनिफेस्टो को निशाना बनाया है, उसे लेकर झूठ बोला है, उससे लगता है कि राहुल गांधी यह बात समझ गए हैं कि उनका मैनिफेस्टो अब लड़ाई का नया हथियार बन चुका है।
नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया, एक रुपया हिंदुस्तान के गरीबों का नरेंद्र मोदी ने माफ नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब 25 साल का मनरेगा, 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की, तो आज मैं आपको साफ बताने आया हूं हमारा जवाब क्या है। मैं आपको बताने आया हूं, उन्होंने अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं।
बीजेपी ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई तरह के झूठ बोले, ऐसे ऐसे झूठ जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है भी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी बोला, ऐसी बातें कह दी जो मैनिफेस्टो में लिखा तक नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि उनका मैनिफेस्टो एक मौका दे रहा है कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। आम आदमी शायद यह समझने लगा है कि गरीब परिवार में एक महिला को एक साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यह बड़ी बात है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का यह हिस्सा तेजी से फैलता जा रहा है। या इससे भी समझ में आता है कि बीजेपी महिलाओं को मंगलसूत्र के नाम पर डराने लग गई है, शायद इसी 1 लाख रुपया देने का असर हो।
हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठका ठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे।
खटाखट या टकाटक, अगर यही मोदी ने किया होता तो गोदी मीडिया के संपादक लिख रहे होते कि मोदी को जनता से संवाद करने आता है, राहुल को नहीं आता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने ऐसा प्रयोग किया है तो कोई अलग से चर्चा नहीं करेगा। शायद राहुल गांधी को लग रहा है कि उनका यह अंदाज 1,00,000 रुपए के मुद्दे को औरतों तक पहुंचा रहा है, युवाओं तक पहुंचा रहा है। राहुल इन चुनावों में घरों में काम करने वाली महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, जिनकी बात आम तौर पर मुख्य धारा की पार्टियां दिखावटी तौर पर करती हैं, मगर राहुल अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में इसे केंद्रीय मुद्दा बनाते हुए दिखते हैं।
भाइयों और बहनों, सीधी सी बात है और महिलाएं ये बात अच्छी तरह समझेंगी। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करते हैं, सही। मनरेगा महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, सही, ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की, के भविष्य की रक्षा करती है। मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। ये बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए, महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात।
चुनाव शुरू होने से पहले कई विश्लेषण तो इसी पर थे कि महिला मतदाताओं का इस चुनाव में बड़ा रोल रहेगा, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का ही प्रभाव है। अमरावती रैली में राहुल गांधी के भाषण को सुनते वक्त यही लगा कि राहुल लगातार महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। यही बात हमने प्रियंका गांधी की रैली में भी देखी, वे महिलाओं से बिल्कुल घरेलू स्तर पर जाकर बात करती हैं। हो सकता है कि राहुल और प्रियंका की यह रणनीति हो कि महिलाओं से ठीक से, आराम से और विस्तार से संवाद करना है।
कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते, महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी, वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगल सूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है, बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे।
राहुल गांधी की रैली के इस वीडियो को सुनते हुए लगा कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैनिफेस्टो पर काफी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी की रैली को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, तो लगता है कि बड़ा हिस्सा मतदाताओं को मुसलमानों के नाम पर भरमाने में चला जाता है। मोदी अपने घोषणा पत्र की बात विस्तार से करते हैं या नहीं, आप उनका वीडियो जरूर देखिए। हम एक बार उनके वीडियो का भी विश्लेषण करेंगे, वैसे पहले कर चुके हैं। जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी भी अपनी सभाओं में बीजेपी के मैनिफेस्टो का उस तरह से उल्लेख करते हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों को गोदी चैनलों पर नहीं दिखाया जाता है वैसे जैसे मोदी का दिखाया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई कि गोदी मीडिया ने जो डिबेट किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, सैकड़ों डिबेट किए हैं, लेकिन उसमें रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर नाम मात्र ही चर्चा हुई है, डिबेट हुआ है। अमरावती में राहुल गांधी काफी उत्साह में दिखे। जानकार राहुल को विजेता की तरह कभी नहीं देखते हैं, मगर इस रैली में राहुल एक नेता की तरह जनता से संवाद करते नजर आए। हम रैली पर आएंगे, मगर उससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बात कही कि वे जब भी जनता के मुद्दे उठाते हैं, मीडिया या छवि बनाता है कि राहुल राजनीति में सीरियस नहीं है। राहुल गांधी को यह समझ में आ गया है कि वे मीडिया के बनाए हुए, गढ़े हुए राहुल गांधी से काफी अलग राहुल बन चुके हैं। मीडिया की बनाई इस छवि के अनुसार अगर आप उस राहुल को देखेंगे तो आज उस राहुल को नहीं देख पाएंगे जो अब बन चुके हैं। क्या लंबी पदयात्राओं ने राहुल गांधी को बदल दिया है? जनता के बीच जाना, उसके बीच लगातार रहना उन्हें बदल रहा है? राहुल अब पहले से कहीं ज्यादा जनता के बीच सहज नजर आते हैं, घुले मिले नजर आते हैं। 2014 के बाद विपक्ष की खामियों पर हर दिन रिपोर्ट आती है, कोई ना कोई लेक्चर दे रहा होता है, या एक डिजाइन के तहत भी किया जाता है कि विपक्ष नकारा है, सक्षम नहीं है। लेकिन इस पदयात्रा ने राहुल गांधी को इस तनाव से मुक्त कर दिया कि दिल्ली के जानकार उनके बारे में क्या सोचते हैं, और राजनीति में केवल विजेता ही होता है। राहुल समझ गए हैं कि राजनीति में पदयात्री भी होता है, जो चलना सीख गया वो बोलना भी सीख जाता है। राहुल गांधी का कितना मजाक उड़ाया गया, अब वही राहुल उस मीडिया से अपने मजाक का हिसाब लेते नजर आ रहे हैं।
मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं, कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए यह कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउडस्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन हेडफोन, वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है।
दिल्ली की सभा के बाद राहुल गांधी अमरावती जाते हैं और एक गंभीर और जिम्मेदार नेता की तरह भाषण देते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हैं, ज्यादातर बातें इसी पर करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो क्या क्या काम करेंगे। आप उनकी रैली का बाकी का हिस्सा जरूर देखिए ताकि पता चले कि इस नेता ने अपने आप में कितना बदलाव किया है।
आगमन आपल्या सगळ्यांमध्ये झालेलं आहे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत आपण या ठिकाणी करूया. माननीय बंधू देशमुख,
नमन करतो आजच्या या महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारार्थ, काँग्रेसचे बळवंतराव वानखडे यांच्या प्रचारार्थ उपस्थित आमचे ऑल इंडियाचे नेते, काँग्रेसचे ऑल इंडियाचे नेते राहुलजी गांधी यांचं आगमन झालंय.
राहुलजी आघाडीच्या वतीनं आणि महाविकास आघाडीच्या वतीनं या पंजाबराव देशमुखांच्या भूमीत होत आहे.
मिठाई बाटो पेढे घर गंध बळवंत वानखडे. बळवंत दादा, मी आपल्याला विनंती करते,
ये कहना चाहता हूं कि कौन से शहर में है और कहां है प्यारे, कौन से शहर में है और कहां है प्यारे, तू जिसे ढूंढ रहा है वो यहां है प्यारे. कौन से शहर में है और कहां है प्यारे, तू जिसे ढूंढ रहा है वो यहां है प्यारे. प्यार की एक नजर डाल और खरीद मुझे, ये मेरा दिल तो मोहब्बत की दुकान है प्यारे.
नाना पटोले जी, थोराज जी, वडे तिवार जी, यशोमती ठाकुर जी, सूर्यवंशी जी, देशमुख जी, मुजफ्फर हुसैन जी और हमारे कैंडिडेट्स बलवंत वानखडे जी, अभय पाटिल जी, वसंत राव जी, सीनियर नेता गठबंधन के, हमारे नेता गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, युवाओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत. गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं. ये जो चुनाव है ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है. पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये इनका लक्ष्य है. इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे. मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है. पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है. संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है. इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती.
हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात ये है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। दूसरी बात, यहां बहुत सारी आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उनको सीधा मैसेज देना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार में और पब्लिक सेक्टर में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। ये थी पहली लाखपतियों की लिस्ट। अब मैं आपको दूसरी लाखपतियों की लिस्ट देने जा रहा हूं। पहली लिस्ट में हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं। अब आप कहोगे करोड़ों लाखपति तो आपने यहां बना दिए, अब कहां बनाओगे? अब मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत तंग किया। पहले उन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उसके बाद नोटबंदी कर दी, गलत जीएसटी लागू कर दी और बेरोजगारी पूरी देश में फैला दी। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। युवा, करोड़ों युवा सड़कों पे, कस्बों पे आगे पीछे दौड़ते हैं रोजगार ढूंढते हुए, और अमीर घर के बेटे क्या करते हैं? अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब जॉब मार्केट में जाने से पहले हिंदुस्तान का हर अमीर परिवार अपने बेटे को, बेटी को 6 महीने की, 1 साल की टेम्पररी नौकरी देते हैं। वो नौकरी उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में दी जाती है और उनको इस नौकरी के लिए पैसा मिलता है। ये अरबपति लोग, बड़े बिजनेस वाले अपने बच्चे को इस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। एक प्रकार से मान लो पेड ट्रेनिंग हो जाती है और जॉब मार्केट में घुसने का तरीका है ये। एक प्रकार से जॉब मार्केट में घुसने का रास्ता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती, भटकते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं मगर कोई इनकी सुनता नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं सुनते। तो हम पहली बार दुनिया में पहली बार एक नया कानून ला रहे हैं जो सुविधा हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं वही सुविधा हम हिंदुस्तान के हर बेरोजगार युवा को देने जा रहे हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में सबसे पहली सरकार होने जा रही है जो अपने युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। सीधा सा मामला है, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को यह अधिकार दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको एक साल की अप्रेंटिसशिप, एक साल की नौकरी हिंदुस्तान की सरकार गारंटी करके देने जा रही है। एक साल में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में आपको नौकरी मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। और भाई और बहनों, सिर्फ ट्रेनिंग और नौकरी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद, एक साल के बाद हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। तो भाई और बहनों, उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब यहां किसान बैठे हैं, हैं? अब किसान कहेंगे, राहुल जी आपने महिलाओं की बात कर दी, आपने बेरोजगार युवाओं की बात कर दी, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हिंदुस्तान के प्यारे किसानों, ये जो 1,00,000 रुपए महिलाओं के जाएंगे और 1,00,000 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को जाएंगे, ये आपको भी मिलेंगे क्योंकि आपके घर में भी ये पैसा आएगा। मगर वो शुरुआत है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में आपका कर्जा माफ नहीं किया। हम आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अभी भैया मूड नहीं बना, ताली मत बजाओ, मैंने बात खत्म नहीं की, क्रांतिकारी बात अब बोल रहा हूं। वो तो नॉर्मल बात थी कर्जा माफ वाली, क्रांतिकारी बात सुनो। हम एक किसानों का आयोग बनाने जा रहे हैं और ये आयोग जब भी हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देगा और किसानों का कर्जा एक बार नहीं अनेक बार होगा। मेरा कहना है, इस देश में धन की कोई कमी नहीं है भाइयों और बहनों। आप देखो अरबपतियों की ओर देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनके घरों को देखो, उनके हवाई जहाजों को देखो, धन की कोई कमी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ हो सकता है। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। आप उनका करो मगर फिर किसानों का भी करो। अगर किसानों का नहीं कर रहे हो तो फिर उनका भी मत करो। अब आखिरी और सबसे मजेदार बात, आज मैं आपका मूड बनाने आया हूं, आज मैं आपको खुश करने आया हूं, नया सपना दिखाने आया हूं। अब सबसे मजे की बात, ये जो मैंने आपको बताया ये तो शुरुआत है, मगर क्रांतिकारी बात भाई और बहनों, ये देखो, ये हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनकी ओर देखो, नमस्कार नमस्कार। आपसे सवाल पूछता हूं, टीवी पे आपने गरीबी कभी बात देखी? आपने किसी भूखे इंसान को, किसी गरीब किसान को, किसी मजदूर को टीवी पे देखा? 90% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। भाई और बहनों, ये टीवी पे कभी दिखते क्यों नहीं? आपने कभी टीवी पे देखा कि किसान की बात हो रही है ना, मजदूर की बात होते हुए देखी? किसी बढ़ई को आपने टीवी पे देखा? किसी नाई को, मोची को, बढ़ई को, छोटे फैक्ट्री वाले को टीवी पे देखा? कभी नहीं। अमिताभ बच्चन देखा? विराट कोहली देखा? टीवी पे पाकिस्तान की बात सुनी? चाइना की बात सुनी? मगर हिंदुस्तान की जनता की बात कभी नहीं सुनी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50, 15 और 8 कितने हुए? कितने हुए? 73। उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दो, कितने हुए? और उसमें 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दो, कितने हुए? 90% से ज्यादा। भाइयों और बहनों, मैंने मीडिया की कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकाली, और इनके जो बड़े से बड़े एंकर हैं उनकी लिस्ट निकाली। मैंने 300 से ज्यादा एंकरों की लिस्ट निकाली, हर मालिक की लिस्ट निकाली, और भाई और बहनों मजे की बात आपको बताता हूं, उस लिस्ट में ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, ना एक आदिवासी, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति, ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा, कोई नहीं। 90% आबादी में से इनमें कोई है ही नहीं। आपकी बात क्यों करें? आपकी बात क्यों करें? आपका तो है ही नहीं कोई इसमें। अब चुप हो गए आप सब? ओ, राहुल गांधी ने सही बात बोल दी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, चेहरे तो हम रोज देख रहे थे। चेहरे तो हम रोज देख रहे थे, मगर हमने नहीं सोचा कि इनमें ना एक आदिवासी, ना एक दलित, ना एक पिछड़ा। ठीक है, छोड़िए, शायद हिंदुस्तान की 90% आबादी मीडिया में भागीदारी चाहती नहीं, हो सकता है। तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं। 200 कंपनी है हिंदुस्तान में, नाम आप जानते हो, अदानी, अंबानी, ये नाम जानते हो। इनकी मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, और इनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनकी लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, 90% में से इनमें भी एक नहीं है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग या गरीब जनरल कास्ट से नहीं है। लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, आपका तो एक आदमी उसमें नहीं है। जीएसटी का पैसा आप देते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी अदानी देता है। यह आपने सुंदर गुलाबी शर्ट जो खरीदी, यह कितने की खरीदी? हां आप, हां भाई आप, हां खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 500 की ना, अगर यही शर्ट अदानी खरीदता कितनी जीएसटी देता हो? जितनी आपने दी, 18% आप देते हो, 18% वो देता है। पैसा आपका, पैसा पिछड़े वर्ग का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का, माइनॉरिटी का, और कर्जा माफ 22-25 लोगों का। अब आप कहोगे, राहुल जी हम मीडिया में नहीं चाहते, हम कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहते। तो मैं कहूंगा ठीक है, सरकार तो ले लो, तो सरकार में देखते हैं। सरकार में दिल्ली की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। बजट को वो बांटते हैं, एक एक रुपया का निर्णय लेते हैं, डिफेंस में कितना जाएगा, सड़कों में कितना जाएगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, रेलवेज को कितना मिलेगा, डिफेंस को कितना मिलेगा, सब कुछ वो निर्णय लेते। 90 तो मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाते हैं 90 में से आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने हैं। आपको पता है, शर्म की बात है, 90 में से एक आदिवासी है और उसको पिछली ऑफिस में कहीं बैठा रखा है। 3 दलित हैं और 3 पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी। और अगर आप पूरे बजट को देखें तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर, दलित अफसर, आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेता है। तो आपकी भागीदारी सरकार में भी नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। यह कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची आबादी, सच्ची पावर ना समझ आ जाए। क्योंकि अगर आपको आ गई तो संविधान से आप दूसरा काम निकालोगे। यह संविधान एक किताब नहीं है भाई और बहनों, यह गरीबों का हथियार है। और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, इधर उधर इधर उधर। सीधा सा उदाहरण, राम मंदिर का इनॉग्रेशन आपने देखा? देखा? पार्लियामेंट का उद्घाटन आपने देखा? राष्ट्रपति का चेहरा आपने उद्घाटन में देखा? क्यों नहीं? हिंदुस्तान की हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति है, आदिवासी है, उनको ना राम मंदिर में जाने दिया और ना नए पार्लियामेंट में घुसने दिया। और फिर आदिवासियों की बात करते हैं, आपको नया नाम दे दिया वनवासी। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। तो भाइयों बहनों, दूध का दूध पानी का पानी करना है, हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। एक्सरे का मतलब जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, सबको अपनी आबादी के बारे में साफ पता लग जाएगा, किसकी कितनी आबादी है। और जाति जनगणना के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हम कर देंगे। ये जैसे सफेद क्रांति हुई, हरी क्रांति हुई, ये क्रांतिकारी निर्णय है भाइयों और बहनों। और ये काम हम सरकार बनाने के एकदम बाद करने जा रहे हैं। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था। मजा आया? जितना पैसा भाइयों और बहनों, जितना वो अरबपतियों को देंगे ना, जितना अरबपतियों को देंगे, उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देंगे। तो याद रखिए, दो तरीके से हम लाखपति बनाने जा रहे हैं, महालक्ष्मी योजना और अप्रेंटिसशिप का अधिकार। और इन दो क्रांतिकारी काम करने के बाद हिंदुस्तान का चेहरा बदलने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माननीय राहुल जी गांधी को आप अपने अमरावती का प्यार की बात कहते हुए।
राहुल गांधी 2024 के चुनाव में 2019 से 2014 से कितना अलग हैं, इस पर बात हो सकती है, होनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से इस बार के राहुल गांधी काफी अलग हैं। वे स्वाभाविक नेता की तरह लगते हैं, उनके भाषणों में हारने का तनाव नहीं दिखता, वे इस भय से मुक्त नजर आते हैं। इसलिए अपने भाषण में जनता को डराते भी नहीं, भरमाते भी नहीं, धर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2024 का चुनाव दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वहां पर धर्म को लेकर ही प्रचार और प्रोपेगेंडा चल रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, परिवार का कोई सदस्य व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस चुनाव के लिए समझदारी बना रहा है, तो प्लीज उसकी मदद कीजिए, उसे दूर कीजिए। ध्रुव राठी ने भी इस पर एक वीडियो बनाया है कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।